दीदी, मैं आपसे मिलना चाहती थी। कृति की आवाज उधर से आई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असल में क्या तूफान उठ चुका है। तुमने ये क्या किया है कृति? सानवी गुस्से में फोन पर बोली। फोन पर बात मत करो, आर्यन ने तुरंत कहा। उसे बस यही बोलो कि वो तुरंत रेस्टोरेंट आ जाए। सानवी ने एक पल की भी देर नहीं की। तुम अभी इसी रेस्टोरेंट आ जाओ, कहकर उसने फोन काट दिया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। दोनों जानते थे अब जो होने वाला है वो उनके लिए आसान नहीं। कृति जब रेस्टोरेंट पहुंची तब आर्यन और सानवी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो सीधे प्राइवेट कमरे में दाखिल हुई, कमरे का माहौल उसे अजीब सा भारी लगा। क्या हुआ दीदी, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? कृति ने हैरानी से पूछा। सानवी ने बिना किसी भूमिका के गुस्से में कहा। तुमने ये क्या किया है कृति? मैंने क्या किया? कृति सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि बात किस तरफ जा रही है। आर्यन ने सानवी की जगह बोलते हुए सीधा आरोप लगा दिया। अगर तुम्हें पता चल गया था कि हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो क्या जरूरत थी ये बात इंद्र को बताने की? कृति कुछ पल तक दोनों के चेहरों को देखती रही। उसके चेहरे पर हैरानी साफ थी। आप दोनों की शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? उसने अविश्वास से पूछा। ये सच है? वो सच में स्तब्ध थी। वो तो अपनी बहन की शादी को एकदम असली समझ रही थी। इतनी अनजान मत बनो कृति, सानवी ने कड़वे लहजे में कहा। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें क्या मिलता है हमारी मुसीबतें बढ़ाकर? सानवी का गुस्सा अब फूट पड़ा। सिर्फ मैं ही परेशान नहीं होती, तुम्हारी वजह से कितने लोग परेशान होते हैं तुम्हें इसका अंदाजा है? लेकिन मैंने किया ही क्या है? कृति की आवाज भर्राने लगी। तुमने इंद्र को बताया, सानवी ने आरोप लगाया। अब वो जैसिका और विक्रांत को बता देगा, कोर्ट में ये बात जाएगी और जय की कस्टडी पहले भी तुम्हारी वजह से गई थी और अब भी तुम्हारी वजह से चली जाएगी। कृति का सब्र टूट गया। पहली बात तो मुझे यही नहीं पता था कि आप लोगों की शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो गुस्से में बोली। और दूसरी बात, मैंने इंद्र को कुछ भी नहीं बताया। मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए, हर बात के लिए मैं जिम्मेदार नहीं होती। जो भी होता है जरूरी नहीं कि वही मैं ही करूं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कृति की आंखों में आंसू भर आए थे। बिना किसी और बात के वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। उसके आंसू गिरे क्योंकि एक बार फिर हर गलती का बोझ उसी के कंधों पर डाल दिया गया था, बिना ये जाने कि सच क्या है। कृति रोती हुई सीधे इंद्र के घर लौट आई। रास्ते भर उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, हर बार शक की सुई उसी पर क्यों आकर रुक जाती है? घर पहुंचने से ठीक पहले ही इंद्र वापस आ चुका था। जैसे ही कृति अंदर दाखिल हुई, इंद्र की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। लाल आंखें, कांपते होंठ और बिखरा हुआ चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था कि वो बहुत टूट चुकी है। क्या बात है कृति? इंद्र ने फौरन पूछा। तुम रो क्यों रही हो? इतनी परेशान क्यों हो? कृति अब खुद को रोक नहीं पाई। दीदी और आर्यन की शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, उसने रोते हुए कहा। और इसी बात को लेकर दीदी और आर्यन मुझ पर बहुत गुस्सा थे। उन्हें लग रहा था कि मैंने आपको ये बात बता दी है, जबकि मुझे तो खुद अभी अभी पता चला है। मैं आपको कैसे बता सकती हूँ जब मुझे ही नहीं मालूम था? इंद्र चौंक गया। क्या? उसने हैरानी से कहा। लेकिन ये बात तो मुझे कहीं और से पता चली है, कृति ने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखा। कहाँ से? उसने धीमी आवाज में पूछा। इंद्री ने नजरें फेर ली। कहाँ से पता चली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने टालते हुए कहा। इतना कहकर इंद्री ने अपना फोन उठाया और सानवी को कॉल किया। सानवी और आर्यन घर पर बेहद परेशान बैठे थे। इंद्र को सच्चाई पता चल चुकी थी और अब ये लगभग तय था कि ये बात जल्दी ही जैसिका के जरिए विक्रांत तक पहुंच जाएगी। ये सोचकर ही दोनों का दिल बैठा जा रहा था। अगर हम इंद्र के घर जाकर उससे सीधे बात करें, सानवी ने बेचैनी से कहा। हम उससे कह सकते हैं कि प्लीज जय के लिए ये बात किसी को ना बताए। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिलाया। हाँ, शायद यही आखिरी रास्ता है। वे अभी इसी बात पर चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक सानवी का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, इंद्र। सानवी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने आर्यन की तरफ देखा और धीरे से कहा, इंद्र का फोन है। आर्यन ने इशारे से कहा, स्पीकर पर डालो। सानवी ने फोन उठाया और स्पीकर ऑन कर दिया। उधर से इंद्र की आवाज आई, ठंडी और सीधी। कैसी हो? हालचाल पूछने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बतानी थी। सानवी कुछ बोल पाती उससे पहले ही इंद्र ने कह दिया, तुम लोगों की शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये बात मुझे पता चल चुकी है। सानवी झट से बोल पड़ी, क्या? लेकिन ये बात कृति को भी नहीं पता, फिर तुम्हें कैसे? इंद्र ने बीच में ही काट दिया, मुझे कहाँ से पता चली ये जरूरी नहीं है। बस इतना समझ लो, कृति से नहीं, किसी और जगह से पता चली है। सानवी की आवाज कांप गई। इंद्र, प्लीज मेरी बात सुनो, हमने ये सब जय के लिए किया है, सिर्फ जय के लिए। प्लीज ये बात किसी को मत बताना। लेकिन इंद्र ने उनकी एक ना सुनी, उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। अब बहुत देर हो चुकी है और अगले ही पल फोन कट चुका था। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। सानवी और आर्यन एक दूसरे को देखते रह गए, ये समझते हुए कि अब तूफान आना तय है। कमरा शांत था, मगर उस शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। कृति खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर शाम ढल रही थी, सूरज की आखिरी किरणें कमरे में आकर बिखर रही थी, लेकिन कृति के मन में उजाला नहीं था। उसने गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर इंद्र की तरफ देखा। इंद्र सोफे पर बैठा था, हमेशा की तरह शांत संयमित, चेहरे पर कोई भाव नहीं। कृति धीरे धीरे उसके पास आई। इंद्र, उसकी आवाज में हल्की झिझक थी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इंद्र ने नजर उठाई। कहो। कृति कुछ पल चुप रही, जैसे शब्द ढूंढ रही हो, फिर बोली, आज जो तुमने किया, जो तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, उसके लिए थैंक यू। इंद्र की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। कौन सा स्टैंड? उसने सपाट लहजे में पूछा। कृति थोड़ा चौंकी। वही आर्यन और सानवी वाली बात, तुमने सच सामने लाया, तुमने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम तुमने मेरी साइड ली। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, फिर इंद्र हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। कृति, उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। कृति का चेहरा उतर गया। मतलब? इंद्र सोफे से उठा, खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। उसकी आवाज और भी सख्त हो गई। मैंने किसी के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, ना तुम्हारे लिए ना किसी और के लिए। कृति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन तुमने कहा कि? इंद्र ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने सिर्फ सच्चाई बताई है, और सच्चाई बताने को मैं स्टैंड लेना नहीं मानता। कृति के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। तो फिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? इंद्र ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में अजीब सी कठोरता थी। ये बात मुझे तुमने नहीं बताई, उसने साफ साफ कहा। मुझे ये बात कहीं और से पता चली, इंद्र ने कहा, ऐसी जगह से जहां झूठ की कोई गुंजाइश नहीं थी। जरूर। सानवी कमरे में इधर उधर टहल रही थी। आर्यन सोफे पर बैठा उसे देख रहा था, मगर कुछ कह नहीं रहा था। अचानक सानवी रुक गई। आर्यन, उसकी आवाज में उलझन थी। इंद्र ने कहा है कि ये बात उसे किसी और ने बताई है, मेरी बहन ने नहीं। आर्यन ने सिर उठाया, उसकी आंखों में शक साफ था। और तुमने मान लिया? उसने धीरे से पूछा। सानवी, इंद्र झूठ भी बोल सकता है, हो सकता है वो कृति को बचाने की कोशिश कर रहा हो। सानवी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। क्या मतलब है? उसने तीखे स्वर में पूछा। आर्यन उठा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मतलब साफ है, इस पूरे मामले में अब तक जो भी हुआ है उसके पीछे कृति ही रही है। अचानक वो बेगुनाह कैसे हो गई? ये सुनते ही सानवी का सब्र टूट गया। बस करो आर्यन,
उसकी आवाज ऊंची हो गई। हर बार मेरी बहन ही क्यों जिम्मेदार होती है? हर गलत चीज का ठीकरा उसी के सिर क्यों फोड़ देते हो तुम? आर्यन भी शांत नहीं रहा, क्योंकि हर बार वही सामने आती है। उसने पलट कर कहा, मैं किसी को बिना वजह दोषी नहीं ठहराता सानवी, मैं बस सच देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सानवी ने कड़वी हंसी हंसी। सच? वो उसके और करीब आ गई। या फिर तुम्हें वही सच दिखता है जो तुम्हें सबसे आसान लगता है? कमरे में तनाव और गहरा हो गया। ये जरूरी नहीं है, सानवी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, कि हर बार मेरी बहन ही जिम्मेदार हो, हो सकता है इस बार सच में कोई और हो। आर्यन ने थकी हुई सांस ली। और अगर इंद्र झूठ बोल रहा हुआ तो? सानवी की आंखों में नमी आ गई, लेकिन आवाज में अब भी दृढ़ता थी। तो तब हम लड़ेंगे, उसने कहा, लेकिन तब तक मेरी बहन को पहले से ही गुनहगार मत बनाओ।